अस्माउल हुस्ना के सिलसिले में अल्लाह ताला के प्यारे नाम अल वासे को देखेंगे। वाव सीन ऐन से वसा वुसत, तो अल वासे का मानी है वुसत पैदा करने वाला। देखते हैं कि मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने अल्लाह ताला के इस नाम को कैसे समझा। इमाम खत्ताबी कहते हैं, अल वासे जल्ल जलालुहु, वो गनी ज़ात है जिसने अपनी सखावत को अपने मोहताज बंदों के लिए वसी कर दिया है और अपनी मखलूक के लिए अपने रिस्क को बिला किसी इम्तियाज के वसी कर दिया। हर एक को देता है, चींटियों को भी देता है और बड़े बड़े जानवरों को भी देता है और इंसानों को भी देता है। यानी उसको तो ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरों को बिला हिसाब रिस्क देता है। इसी तरह इमाम हलीमी फरमाते हैं कि अलवासी से मुराद वो ज़ात के तमाम चीज़ें इसके कब्ज़े कुदरत और इसके इल्म में हों, अपने फ़जल और अपनी रहमत को फैलाने वाला, और ये चीज़ इसको तमाम नक्स और इल्लतों से पाक करती है। और ये बात इसकी दलील है कि इसको कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती, कोई चीज़ इससे छुपी हुई नहीं है, इसकी रहमत ने हर चीज़ को ढांप रखा है। यानी अल्लाह ताला के इस नाम का असर उसके फजल और उसकी रहमत तक जाता है। हर चीज़ में वसतें पैदा करने वाला जितना दूसरों को देता है उतनी ही उसके खजानों में कमी नहीं आती, बल्कि उसकी वसतें बढ़ती ही जाती हैं। आप देखिए कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन कोई भी वास्ते मुतलक नहीं है। मुतलक का मतलब कि मुकम्मल तौर पर। दुनिया में कोई एक चीज़ में वसी होगा तो दूसरी में कमी होगी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वास्ते मुतलक है। अगर इसके इल्म की तरफ देखा जाए तो इसके इल्म का कोई किनारा नहीं। समंदर ख़त्म हो जाए मगर इसकी तारीफ़ों को लिख नहीं सकते। इसके एहसान, इसकी नेमतें गिनी नहीं जा सकती, उसकी कोई हद नहीं। वाइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो गिन नहीं सकते, उसका एहसान नहीं कर सकते। फिर आप देखिए उसका सुनना, उसका देखना, उसकी ज़ात क्या खूबसूरत ज़ात है। हर चीज़ उसके मुकाबले में तंग होती है, कोई भी एक वसत हो उसकी हद होती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात की वसतें उसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह की ज़ात ना उसकी कोई हद, ना उसकी इंतहा, ना उसका कोई किनारा। अबू उबैदा कहते हैं कि हर मांगने वाले को अपनी शान के मुताबिक देने वाला है। अल्लाह अकबर। इसी तरह इब्ने जरीर कहते हैं, इन्नल्लाहा वासिउन अलीम, अल्लाह ने अपनी तारीफ वासे की सिफत से की है कि इसने अपनी किफ़ायत, फजल, तदबीर, सखावत को अपनी तमाम मखलूकात के लिए वसी कर दिया। और ये भी तारीफ़ की गई कि अलवासियु वो ज़ात है जिसने अपने रिस्क को अपनी तमाम मखलूकात के लिए फैला दिया, और कोई भी ऐसी मखलूक नहीं जो इसके दिए हुए रिस्क में से ना खाती हो, और ना कोई इस बात पर कादिर है और ना ही किसी के लिए ये मुमकिन है कि अल्लाह के रिस्क को छोड़कर किसी और से अपनी हाजत पूरी कर ले, क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात एक ही है। दुनिया में होता है ना, एक से नाराज़ हो तो कहते हैं अच्छा दूसरे से ले लेंगे, अच्छा एक ने काम नहीं किया अच्छा ढूंढो कोई और नहीं है जो ये काम कर दे, लेकिन अल्लाह की ज़ात सुभान अल्लाह कि किसी जगह भी उसको छोड़ के इंसान अपने आप को बेनियाज नहीं कर सकता। इसी तरह इमाम सादी अल्लाह के इस नाम के बारे में फरमाते हैं, वो ज़ात है जो बड़ी बुजुर्गी, शानदार बादशाहत और अजीम सल्तनत का मालिक है, बहुत ज़्यादा फजल और एहसान करने वाला, इसके साथ ज़्यादा करीम सखी है। इसी तरह इमाम कुर्तुबी कहते हैं, अलवासे वो ज़ात है जो अपने बंदों पर दीन के मामले में भी आसानी का मामला करता है और ऐसे काम का हुक्म नहीं देता जिसकी वो ताकत ना रखते हों। सच है ना, दीन में कोई तंगी नहीं। वो वासे है तो उसने तंगियां निकाल दी, दुनिया की, दीन की, अहकामात की, मुआशरे की, हर चीज़ को आसानियों में डाल दिया। पुराने पाक में अल्लाह ताला का ये नाम 9 दफ़ा आता है, सूरत बकरा आयत 115 में, फिर सूरत बकरा ही की आयत 247 और 268 में, सूरत निसा आयत 130 और सूरत नजम की आयत 32 में आता है, और इसी तरह कुछ और सूरतें हैं जिसमें ये नाम आता है। इसी तरह अल्लाह ताला की ये सिफत एक दूसरी सिफत अल अलीम के साथ मिलके आती है, यानी अल वास्से और अल अलीम के साथ मिलकर 7 जगह अल्लाह की ये सिफत आती है, यानी अता करने वाला और अपनी मखलूक के हालात को जानने वाला, जितना चाहे दे कमी नहीं होती। सूरत बकरा की आयत 185 में आता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता। हम अपने ऊपर सख्ती कर लें उसको परवाह नहीं, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, उसके सवाब के उसकी रहमतों के ख़जाने भी भरे हुए, उसकी मग़फ़रत और उसके फ़जल की कोई इंतहा नहीं। मैं तो अल्लाह ताला के इस नाम पे गौर करूँ ना तो मेरे ज़हन में तो एक समंदर आ रहा है जिसका कोई किनारा नहीं, कोई हद नहीं है। अब समंदर से कितना ही पानी क्यों ना निकाले, हल्की सी भी कमी नहीं होती। और इससे आपको अल्लाह की रहमत का भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो कितनी रहमतों का मालिक है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कायनात के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं अगर उसको देखें तो क्या हाल होता है। सूरत बकरा में भी आता है ना, वसीअ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, आयतुल कुर्सी आयत 255, जिसको हम आयतुल कुर्सी के नाम से याद करते हैं। उसका इल्म आसमान और ज़मीन से बहुत ज़्यादा वसी है। सूरत अनाम आयत 80 में आता है, वसी रब्बी कुल्ल शयइन इल्मा, वही है जिसका इल्म हर शय पर हावी है। एक जगह आता है, व रहमती वसअत कुल्ल शयइन, कि मेरी रहमत ने हर चीज़ को समा लिया। बहुत जज्ब करने की कैफियत जहन में आ रही है कि जिसके पास सब कुछ हो, अल्लाह की रहमत आ गई, उसकी नज़र करम रहमत सब कुछ अपने बंदों को देता है, तभी तो अपने रास्ते में आने वालों के कभी कान बन जाता है, कभी उनकी ज़ुबान बन जाता है, कभी उसकी आँख बन जाता है। जिस इंसान से अल्लाह की रहमतें हट जाएं, अल्लाह की वसअतें उसके ख़जानों की वसअतें इंसान से हट जाएं, तो इंसान दुनिया में रहते हुए जलील व ख्वार हो जाए, रहमत का एक कतरा उनके ऊपर ना पड़े और अल्लाह के अजाब उनको पकड़ लें। हमारे इस नाम के साथ ताल्लुक़ क्या होना चाहिए कि पहली बात गौर और तदब्बुर करें, इस कायनात की वसअतों के बारे में गौर करें कि अल्लाह ताला क्या कुछ करता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। आजकल जो हम सिरात मुस्तकीम कोर्स कर रहे हैं यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा टॉपिक बहुत खूबसूरत था उसमें, कि इस कायनात में अगर इंसान देखे कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ फैलाया हुआ है, और अपनी ज़ात अपने वजूद के ऊपर गौर करना, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मानी और मफहूम की जिसको कहते हैं ना कि इंतहा ही नहीं है, अल्लाह की ज़ात के बारे में तो इंसान बात कर ही नहीं सकता, कितनी भी करेंगे। हक़ तो ये है कि हक़ अदा नहीं होता। आप आसमानों को देखिए, सितारों को देखिए, सोलर सिस्टम को देखिए, समंदर में पानी के कतरों को देखिए, आसमान में तैरते हुए सितारों को गिन लें, ऐसे लगता है उसकी हर चीज़ बेहिसाब है। मादनियात को देखें, तेल को देखें, जो माइंस की सूरत में पहाड़ों के अंदर गंधक लोहा और सोना और चांदी रखा हुआ है, हमें तो पता भी नहीं है, और उसने तो हमें ऐसी जन्नतों का वादा दिया है कि जिसकी वसअतों का हमें यकीन ही नहीं, हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके, वसार यू इला मग़फ़िरतिन व जन्नतिन अर्दुहा समावाति वल अर्द, उस जन्नत की तरफ भागो जिसकी चौड़ाई सिर्फ आसमान और ज़मीन जितनी है। तो फिर हम क्यों गौर नहीं करते, इतना कुछ उसने फैला दिया, इतनी कायनात पैदा करके सबको रिस्क देता है, खिलाता है पिलाता है, उनकी बीमारियाँ उनके दुख सुनता है। अब देखिए कि एक वक्त में कितने लोग अल्लाह को पुकारते होंगे ना, अल्लाह ताला सबकी सुनता है, ये नहीं कहता नहीं इस वक्त लाइन बिजी है, क्या ये उसकी वसूतों का इजहार नहीं है। कितनों को देता है, ज़रा गलती नहीं लगती कि एक को भूखा छोड़ दूँ। जितना अल्लाह ताला की अजमत का ख्याल दिल में होगा, उतना उसकी बात को सुन के मानना भी हमारे लिए आसान होगा। शेख सादी कहते हैं कि हवा, बादल, चांद, सूरज और आसमान सब के सब काम में लगे हुए हैं ताकि तू अपना तोशा हासिल करे और इसे गफलत से ना खाए। ये सब तेरे लिए सरगुश्ता और फरमा बरदार हैं। अब भी तू हक ताला की फरमा बरदारी ना करे तो ये जुल्म होगा। इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात जब उसकी बात मानती हैं तो मैं क्यों ना मानूं? और मैं सबसे छोटा होके सबसे ज़्यादा हुक्मों को तोड़ूं तो फिर मेरे लिए इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी? मुल्ला अली कारी कहते हैं, बंदे का इस जिस्म से हिस्सा ये है कि अल्लाह के मारिफ में गौर व फिक्र करे और सखावत तबई को अपने अंदर पैदा करे और नफ्स के एतबार से मुस्तगना ना रहे, नफ्स के एतबार से मुस्तगनी रहे और ज़ाया हो जाने वाली चीज़ के ज़ाया होने पर शरण गैर मतलूब तर्ज पर अफसोस ना करे और ख्वाहिशात के हसूल में इहतमाम ना करे। एक बड़ी खूबसूरत रिवायत रखूंगी जिससे आपको अल्लाह ताला की रहमतों की वसअत का अंदाज़ा होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने वहशी जिसने हज़रत हमज़ा को कत्ल किया था उनको इस्लाम के लिए पैगाम भेजा। उन्होंने जवाब में कहा कि आप मुझे अपने दीन की तरफ दावत दे रहे हैं हालांकि मैंने कत्ल भी किया, जिना भी और शिर्क भी। और कुरान पाक में है कि यल्का असामा युदाफ लहुल अजाब, यानी वो आखरत में गुनाहों को लेकर आएगा और उसके लिए दुगना चुगना अजाब होगा। ये सूरत फुरकान की आयतें हैं जो इन गुनाहों के बाद आती हैं उसकी सज़ा में। कहते हैं, मैं तो ये सब गुनाह कर चुका। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालेहन, मगर वो शख्स जिसने तौबा की, ईमान लाया और इमाले सालेह किए उसकी मगफरत होगी। वहशी ने कहा, ये तो बड़ी कड़ी शरायत है, हो सकता है कि मैं ये शरायत पूरी ना कर सकूं, यानी तौबा, ईमान और अमल सालेह का दर्जा ना कर सकूं। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की कि इन्नल्लाह ला यग़फिर अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा गुनाह जिसके चाहे माफ़ कर दे। वहशी ने कहा, मुझे अब भी शुबा है कि पता नहीं मेरी मग़फ़रत हो कि ना हो। इस पर यह आयत लिमन यशा है, यानी जिसके लिए चाहेगा माफ़ करेगा। तो इस पर रियायत नाजिल हुई, कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। आप फरमा दीजिए कि मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को तौबा से बख्श देता है, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। वैशी ने कहा, हाँ ये बात है, तो अब मुझे अपनी निजात की उम्मीद हो गई। और फिर वो हाजिर खिदमत हुआ और इस्लाम कबूल किया। मुसलमानों ने कहा, क्या ये ख़ास तौर पर इन्हीं के लिए है, यानी ये सारी आयतों में खुशखबरी क्या इन्हीं की है या तमाम मुसलमानों के लिए ये हुक्म है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सब मुसलमानों के लिए यही बात है। कौन है जो गुनाह करके रो रहा है, शर्मा रहा है और वो नहीं आना चाहता सामने? अल्लाह ताला की रहमत, उसकी वसत उसको भी बुलाती है कि औला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। इतने फजल और इतनी वसतों के बाद फिर अगर कोई बंदा अल्लाह से मायूस रहे तो ये उसकी अपनी बदबख्ती है। हसन बसरी कहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस वसत करम और शफकत की कोई इंतहा है कि जिन्होंने अल्लाह के दोस्तों के खून से अपने हाथ रंगीन किए इन्हीं को दावत व तौबा और मग़फ़रत दी जाती रहे। अल्लाह अकबर, यानी हर एक को बुलाता है, वापस आ जाओ, पलट आओ। अल्लाह के नबी की एक दुआ है जिसमें यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। हाकिम की रिवायत है, अल्लाहुम्मा जाल औसा रिज़्क़ी का अलैया इंदा क़िबर सिन्नी वन क़िताई उम्री, ए अल्लाह उम्र बढ़ जाने पर और बुढ़ापे के वक्त अपना रिस्क मुझ पर और ज़्यादा वसी फरमा, क्योंकि आखिरी दिनों में इंसान खुद काम नहीं कर पाता, कुछ माल की मोहब्बत भी बढ़ जाती है, मौत की कुर्बत बंदे को मायूसियों की तरफ ले जाती है। ऐसे वक्त में अगर एक इंसान अल्लाह की तरफ से ज़्यादा रिस्क पाता है, तो उसके दिल में अल्लाह की याद और आखिरत की तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है और वो हर गम और फिक्र से आज़ाद होता है। इसलिए इसको पढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में इसको हिस्सा रख दीजिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अलैह, जिनको उम्र सानी भी कहा जाता था, फरमाते थे, ए अल्लाह, अगरचे मैं इस बात का अहल नहीं कि तेरी रहमत तक पहुंच पाऊं, लेकिन तेरी रहमत तो उसकी अहल है कि मुझ तक पहुंच जाए। कितनी प्यारी बात है, यानी मैं तो इस काबिल नहीं, लेकिन तेरी रहमत तो इतनी है कि वो मुझ तक आ जाए, क्योंकि तेरी रहमत हर चीज़ को शामिल है, जैसा कि तेरा इरशाद है, व रहमती वसीयत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत हर चीज़ को वसी है और मैं भी एक शय हूँ, लिहाजा तेरी रहमत मुझे भी शामिल होगी, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। अब देखिए कि एक माँ जैसे अपने बच्चे से मोहब्बत और शफकत करती है ना, उसको भी कोई ना पर तोल नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह की ज़ात जो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने लिए, वो भी अपने बंदे को दुश्मनों से बचाती है, और दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि वो शैतान लाइन जो हमारे ईमान का और हमारी नेकियों का और हमारी जन्नत से हमें दूर करने वाला है, उसके शर से महफूज रखे, और हम वाकई अल्लाह ताला के इस नाम को सुनते हुए अपने दिलों को भी वसी कर लें। हमारे लिए अमल की यही बात है, अपने अंदर दूसरों के लिए वसअत कलबी रखनी है, दूसरे मुसलमानों के साथ अपना ताल्लुक नरमी वाला करना है, और ऐसा नहीं करना कि हम किसी को बर्दाश्त ही ना कर सकें। अल्लाह ताला हमारे दिलों में वसअतें डाल दे, हमारे माल में वसअतें डाले, काम में वसअतें डाले, और ऐसी वसअत दे दे कि जिसको पाने के बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना रहे।